समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार नेहा, अ हार्टफेल्ट हेलो, अ गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड नेहा। एंड एज नेहा टोल्ड यू, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस अपडेट्स एंड ट्रिब्यूट्स, एंड देयर इज अ लॉट मोर all over the next 30 minutes. All this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मेड इन इंडिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई और हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोडोट्स निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस पहल को देश में मेक इन इंडिया के लिए एक नए अध्याय का शुभारंभ बताया।
Chief of Defence Staff General Anil Chauhan says India's own Iron Dome, Sudarshan Chakra, will protect strategic sites, acting both as shield and sword. ED conducts raids at former Delhi Health Minister Saurabh Bhardwaj's residence in case related to Delhi hospital construction scam.
जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से व्यापक नुकसान, प्रमुख नदियां उफान पर।
In Jammu and Kashmir, Vaishno Devi Yatra temporarily suspended due to heavy rains in Katra. Class 10 and 11 exams scheduled for tomorrow postponed.
और हॉकी इंडिया ने बिहार के राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के मुकाबले देखने के लिए निशुल्क प्रवेश की घोषणा की।
Listeners, it's time for our segment Dateline India and very interesting topic. Today, we will be discussing about fueling the future, the shift from petrol to alternatives. Well, listeners, India has registered 56.75 lakh electric vehicles by February 2025, reflecting rapid adoption of clean mobility. Well, today, we are here again to talk about something that concerns each and every one of us, our future without petroleum. Yes, alternatives to petroleum products.
बिल्कुल सही। पेट्रोलियम ने एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारी दुनिया को ऊर्जा दी है, लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है कि यह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है और यह पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। वायु प्रदूषण से लेकर जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने तक पेट्रोलियम धीरे धीरे समाधान की बजाय एक समस्या बनता जा रहा है।
जी, एंड पेट्रोलियम इट हैज हार्म्स। It definitely harms human health by causing respiratory problems, skin irritation, nausea, headaches and potentially cancer. Well, this is due to toxic chemicals like benzene. And well, if we talk about environmental harms that it causes, petroleum use contributes to air pollution, acid rain, oil spills, which leads to actually water contamination, also ecosystem destruction and climate change. This is through greenhouse gas emissions. Well, these effects, they often disproportionately affect vulnerable communities and also wildlife. Well, mining and drilling activities, they can disrupt and destroy ecosystems and the habitats of wildlife.
पेट्रोलियम में मौजूद बेंजीन जैसे यौगिक कैंसरकारी माने जाते हैं
जी,
और ल्यूकेमिया समेत कई तरह के कैंसर के खतरे को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही लिवर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेट्रोलियम ईंधन के जलने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, और ये गर्मी सोख लेती है और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके वैकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल, आइए पेट्रोलियम उत्पादों के कुछ सबसे आशाजनक विकल्पों पर बात करते हैं शगुन।
यस नेहा, आई विल नेम फॉर आवर लिसनर्स, आई विल नेम अ फ्यू ऑफ देम। बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, नेचुरल गैस, सोलर एंड विंड पावर, दे आर ऑल लीडिंग द वर्ल्ड इन मूविंग टुवर्ड्स क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स, एंड वी हैव सीन देयर यूजेस एज वेल, एंड वी आर हियर टू टॉक अबाउट देम। Other alternative fuels like the world of biofuels, they have amazing benefits. So let's find out what are biofuels. They are actually fuels made from natural organic materials like plants, also crop waste and even algae. For example, like ethanol, biodiesel and biogas, these are all examples of biofuels.
बिल्कुल. जीवाश्म ईंधनों के विपरीत जैव ईंधन नवीकरणीय और बहुत अधिक स्वच्छ होते हैं. जैव ईंधन नवीकरणीय होते हैं, इसका मतलब यह है कि पेट्रोलियम के विपरीत जिसके बनने में लाखों साल लगते हैं, जैव ईंधन का बार बार उत्पादन किया जा सकता है, वो भी टिकाऊ तरीके से. जैव ईंधन पेट्रोल या डीजल की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं, कम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कम ग्लोबल वार्मिंग.
यस नेहा, सो बायोफ्यूल प्रोडक्शन क्रिएट्स न्यू मार्केट्स for farmers, especially for crops like sugarcane, maize and even used cooking oil. It brings job opportunities as well and economic growth in turn to rural areas, making farming even more valuable. Well, biofuels, listeners, they are biodegradable and less toxic. This means fewer risks in case of spills or accidents, as I was just talking about oil spills, which leads to water contamination. And India, let's talk numbers, is now the world's third largest ethanol producer and also consumer. Ethanol blending in petrol increased from 10% in June 2022 to 17.98% by February 2025.
सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक इसी मिश्रण को 20% तक प्राप्त करना है, जो कि 2030 के पूर्व निर्धारित लक्ष्य से आगे है. इसे सब्सिडी, कम जीएसटी और दीर्घकालिक खरीद समझौते के माध्यम से समर्थित किया जा रहा है. बायोमास से बने इथेनॉल और बायोडीजल प्रमुख जैव ईंधन है, जो परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद करते हैं.
फोकसिंग नाउ एंड एलैबोरेटिंग अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन. वेल, ग्रीन हाइड्रोजन इज मेड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन and also oxygen using solar or wind energy. Oxygen and hydrogen. It will replace fossil fuels in industries like steel and transport and provide long-term clean energy storage. The National Green Hydrogen Mission was launched by the Government of India to cut carbon emissions and make India a global leader in green hydrogen. So, by 2030, the goal is to produce 5 million tons of green hydrogen every year.
हमारे श्रोताओं को बता दें कि यह मिशन उत्पादन पायलट परियोजनाओं, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान पर केंद्रित है. साथ ही इस्पात, परिवहन और उर्वरक क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ईंधन के उपयोग की योजना भी है. इसे आगे बढ़ाने के लिए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 3 प्रमुख बंदरगाहों, कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन की पहचान की है, जिन्हें हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
सो व्हाइल नेहा वाज एक्सप्लेनिंग दैट, लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईवीज एंड बैटरी व्हीकल्स. वेल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ विजन टू अचीव 30% ईवी पेनिट्रेशन बाय 2030, अलाइनिंग विद द ग्लोबल ईवी 30@30 इनिशिएटिव. वी हैव सीन सो मेनी ईवीज राइट ऑन रोड्स व्हाइल ट्रैवलिंग. The world is, of course, turning toward a cleaner, smarter solution, and that's battery-powered mobility. So let's plug in to the key benefits of battery vehicles. Well, battery vehicles run on electricity, which means they produce zero tailpipe emissions, no exhaust fumes, no smoke, just clean and quiet transportation, great for reducing air pollution, especially in cities.
इलेक्ट्रिक वाहन चलाना और उनका रखरखाव करना बहुत सस्ता है. बिजली पेट्रोल या डीजल से सस्ती है और कम चलने वाले पुर्जों का मतलब है कम रखरखाव लागत. बैटरी वाहन एक शांत और सुगम ड्राइविंग अनुभव प्रदान करते हैं. इंजन का शोर नहीं, गियर बदलने का शोर नहीं, चालक और पर्यावरण दोनों के लिए शांतिपूर्ण अनुभव होता है ये. और आगे बढ़ते हुए शगुन बताएंगी कि इनके और क्या क्या फायदे होते हैं.
सो When charged using solar or wind power, battery vehicles, they become 100% green from source to wheels. It's a perfect match, clean energy powering clean transport.
इलेक्ट्रिक वाहन आयातित तेल पर हमारी निर्भरता कम करते हैं, पैसे बचाते हैं और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हैं. यह सिर्फ समझदारी ही नहीं, रणनीतिक भी है.
So, listeners, for you, we have a great news, a good news here. Prime Minister Narendra Modi marked a historic milestone in India's green mobility journey by inaugurating Suzuki's first global strategic battery electric vehicle, the e-Vitara, at the Hansalpur plant in Ahmedabad today. This marks an important step leading to export of Made in India BEVs to over 100 countries.
प्रधानमंत्री ने तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के संयुक्त उद्यम TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही हो। यह ऐतिहासिक प्रगति न केवल भारत को वैश्विक ईवी आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण और प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार की दिशा में एक निर्णायक छलांग ले रही है इस कदम से।
Yes, Neha, and let's tell our listeners are taking larger strides towards becoming Atmanirbhar Bharat in the field of green energy. Well, Atmanirbhar basically in the field of green energy. The Prime Minister said he inaugurated actually the green mobility initiatives in Hansarpur, Gujarat today. Addressing the gathering, the Prime Minister noted that amid the festive spirit of Ganesh Utsav, a new chapter is being added to India's Make in India journey. He remarked that this marks a significant leap towards the shared goal of Make in India, Make for the World. Mr. Modi highlighted that starting today, well, electric vehicles manufactured in India will be exported to 100 countries, emphasizing that today also brings a new dimension to the friendship between India and Japan. The Prime Minister extended his heartfelt congratulations to all citizens of India, to Japan and to Suzuki Motor Corporation.
मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह स्थानीयकरण भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि इससे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था भारत बैटरी का भी निर्माण करे। इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहाँ TDSG बैटरी प्लांट की नींव रखी थी। TDSG की ही नई पहल पर इस फैक्ट्री में 3 जापानी कंपनियां मिलकर भारत में पहली बार सेल मैन्युफैक्चर करेगी। भारत में बैटरी सेल के इलेक्ट्रोड भी लोकल लेवल पर तैयार होंगे। ये लोकलाइजेशन भारत की आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देगा।
वेल, स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड Clean mobility is the future and India is set to emerge as a reliable center for clean mobility solutions. Well, he added, and I'm quoting, going forward, India's focus will be on a futuristic industries, will be on the futuristic industries. He added that, reiterating India's commitment to development, he said that alongside mission manufacturing, the government has also launched the National Critical Mineral Mission to meet the auto industry's growing demand for rare earth magnets.
भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगह पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। Critical minerals ko talasha jayega.
Well, flagship initiatives like FAME 2, PME Drive, PLI schemes and PME Bus Seva, they are steering investment, localization and also large-scale EV adoption.
भारत में हरित गतिशीलता अब सिर्फ एक आकांक्षा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो देश की गति और विकास को नया आकार दे रही है। भारत का हरित गतिशीलता अभियान परिवहन की कहानी को नए सिरे से लिख रहा है। इंजनों की गर्जना की जगह नवाचार की शांति ध्वनि ले रही है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
वेल यस, केरला इज मूविंग टू फेस्टिव मूड। वेल, स्टेट्स बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल थिरुओनम इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन सेप्टेम्बर 4 एंड द ओनम सेलिब्रेशन बिगिंस विद टुडेज अथम फेस्टिवल। वेल, वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
Onam is not just a one-day festival. The festive spirit begins with the start of Malayala month Chingam. The formal celebrations begin on Attam Day, which is being observed across the state from this morning. The highlight of Attam is the Attapookalam, the floral carpet that households create every day until Thiruvonam. Another major attraction is the grand Attachamayam procession at Thrippunithura in central Kerala, where Kerala's vibrant culture and heritage come alive through the traditional art forms. In the coming 10 days, cultural programs, get-togethers, competitions and various events will take place across the state. The festival also boosts trade and commerce as people spend more during this season, adding to the vibrant celebrations of Onam. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को पारित कर दिया है। इसके तहत अब मदरसे समेत सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को एक ही छत के नीचे पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर निगरानी मिलेगी। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता साक्षी सिंह।
उत्तराखंड विधानसभा में पारित उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को प्रदेश सरकार ऐतिहासिक कदम मान रही है। इस विधेयक के तहत प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता लेने के लिए इसी प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होगी। प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वे संस्थानों की मान्यता, शैक्षिक गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करे। सरकार का कहना है कि इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ होगी बल्कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। साथ ही सरकार को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के संचालन की प्रभावी निगरानी और आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। सरकार का तर्क है कि ये कदम किसी धर्म या संस्था के नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में समान अवसर और उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो ये कानून उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को नई दिशा देगा और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए ये एक बड़ा अवसर साबित होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
Well, now we have a very interesting update and a very interesting report. Well, Sikkimese filmmaker Tribeni Rai's debut feature, Shape of Momo, has earned a prestigious spot at the Busan International Film Festival 2025, well, Asia's largest and most celebrated film festival. This film has been officially selected for the Vision Selection, which is dedicated to showcasing daring and original stories from independent Asian cinema.
Held annually in Busan, South Korea, BIFF is renowned for discovering bold new voices and connecting Asian cinema with the world. Its vision section brings together promising work from both emerging and mid-career directors. Filmmaker Tribeni Rai shares her thought on this remarkable achievement.
My debut film, Shape of Momo, has been selected at Busan International Film Festival this year in the Vision section. We are absolutely thrilled by the selection since Busan is one of the most biggest and prestigious film festival in Asia. They showcase very important from around Asia. So we are really excited to be part of the official selection. And we are really looking forward to our screenings and the whole experience in Busan.
The international recognition does not stop at Busan. Shape of Momo will also be screened at the San Sebastian International Film Festival in Spain this September, further cementing its place on the global stage. This double selection marks a significant milestone in Tribeni Rai's creative journey and highlights the growing presence of Sikkimese cinema on the world map. With Mainak Chatterjee, Dilram Dulal, Akashvani News, Gangtok for Parikrama.
Listeners, the Indian Institute of Technology Madras researchers have developed an innovative and affordable microfluidic device that can rapidly determine whether bacteria are resistant or susceptible to antibiotics. We have a report on this. Listen in.
The chip device can deliver results within 3 hours and is based on electrochemical impedance spectroscopy. Antimicrobial resistance is one of the most pressing challenges facing global healthcare systems today. Antimicrobial susceptibility testing is an important method used to identify which antibiotics will work against a specific infection. It helps doctors choose the right treatment and avoid the misuse of antibiotics, which is a major cause of antimicrobial resistance. However, traditional AST AST methods which involve growing bacterial cultures and observing their response to antibiotics are labor intensive and typically takes 48 to 72 hours. This delay can lead to use of broad spectrum antibiotics as a stopgap, which in turn exacerbates the resistance problem. IIT Madras team has developed a cost-effective phenotypic testing device that uses electrochemical signals to assess bacterial growth and antibiotic susceptibility. This device meets several key criteria outlined by the WHO, including affordability, speed, ease of use, and reliability. This research has been published in the prestigious Nature Scientific Reports, a peer-reviewed open-access scientific mega-journal published by Nature Portfolio covering all areas of natural sciences. The researchers tested the device on two types of bacteria, gram-negative E. coli and gram-positive B. subtilis. They used two antibiotics with different modes of action, ampicillin, which kills bacteria, and tetracycline, which prevents them from growing, to confirm the device's ability to detect both kinds of responses. The chip was able to detect susceptibility profiles within 3 hours. In an important demonstration of real-world applicability, the team also tested the device on urine samples spiked with E. coli and successfully identified resistance to tetracycline, showing the potential of this device in clinical diagnostics. Joy, Akashwani News from Chennai for Parikrama.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
जी,
हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 के बिहार के राजगीर में होने वाली सभी मैचों के लिए आगंतुकों के लिए प्रवेश निशुल्क होगा रहेगा। प्रतियोगिता 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगी। भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया और बांग्लादेश प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।
Well, yes, the next update is from the world of chess. Indian Grandmaster R. Pragyanand scored a victory over French Alireza Firouzja in the 7th round of the Sank Field Cup, which is a part of the Grand Chess Tour in United States. Now, let's give you the business updates. Benchmark domestic equity indices ended 1% down, each amid additional U.S. tariffs starting from tomorrow. The Sensex lost 849 points to close at 80,786. Similarly, Nifty dipped 256 points to settle at 24,712.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
सुबोध रॉय वॉज पॉपुलरली नोन एज झुंकू रॉय। ही वॉज बोर्न इन 1915 इन चिटागोंग। रॉय वॉज अ रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इन 1930 लीडर ऑफ द रेवोल्यूशनरी इंडियन रिपब्लिकन पार्टी सूर्य सेन प्लान द रेड ऑन ब्रिटिश आर्मरीज इन चिटागोंग। The plan included capturing of two main armories and loot the imperial banks at Chittagong to gather money for further uprisings and to free the jailed revolutionaries.
On 18th of April, the plan was executed. One group also captured the European club's headquarters. The revolutionaries gathered outside the police armory, where Sen took a military salute, hoisted a national flag, and proclaimed a provisional revolutionary government. The revolutionaries left Chittagong town before dawn and marched towards the Chittagong hill ranges, looking for a safe place to hide. In a few days, they were captured by the police. Subodh Roy was in the first batch to be sentenced. After the trial, Roy was deported to the cellular jail in Port Blair in 1934.
After the release from jail in 1940, he joined politics and became a member of the Communist Party of India.
26th of August is also the death anniversary of freedom fighter Dr. Narayan Subbarao Hardikar, who founded the Congress Seva Dal. Hardikar was born in Dharwad in 1889 to Subbarao and Yamuna Bai. He studied medicine at the College of Physicians and Surgeons, Calcutta, and then went to America for higher education. Hardikar met Lala Lajpat Rai in America and became his close associate. As his colleague, Hardikar became active in many political activities in America. He was the president of the Hindustan Association of America. He organized an Indian Students' Convention in Chicago and joined the Home Rule League founded by Lalaji. With Lalaji, he published a journal, Young India. During his stay in America and Canada, He apprised the Indians living there about India's freedom struggle.
Hardikar participated in several movements during the freedom struggle. Congress launched Flag Satyagraha in protest against the atrocities of the British police on the flag procession and insult of national flag. The movement was launched at Nagpur under Dr. Hardikar. He went to jail many times. During this time, Hardikar thought of an organization of disciplined and trained youth of strong character. Consequently, Seva Dal was formed in the Kakinada session of the Congress on 27 December 1923. The Dal played a stellar role in the civil disobedience movement.
In 1925, Dr. Hardikar published a monthly journal named Volunteer and devoted himself to the cause of the Seva Dal entirely. Dr. Hardikar was a two-term Rajya Sabha MP from 1952 to 1962. He was conferred the Padma Bhushan in 1958. Dr. Hardikar died on 26th of August 1975. To commemorate his birth centenary, the Department of Posts issued a commemorative stamp in his honor in 1989.
शोले के रहीम चाचा हो या लगान फिल्म के शंभू काका, इन किरदारों के बारे में बात करते ही एक बुजुर्ग शख्स की छवि सामने आती है। इस किरदार को निभाया था लेजेंडरी एक्टर अवतार किशन हंगल उर्फ एके हंगल ने। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी अदाकारी ऐसी थी कि दर्शक उससे आसानी से जुड़ जाते थे। आइए अपने श्रोताओं को सुनाते हैं उनके फिल्म के कुछ मशहूर डायलॉग्स।
ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
कपड़े धोए, बर्तन मांजे, झाड़ू झटका किया, भूखा रहा, गालियां सुनता रहा, मगर मैंने घर की बात कभी बाहर नहीं जाने दी।
Well, yes, listeners, we are talking about actor A.K. Hangal. He worked across several decades in Hindi cinema and became a household name. Well, through this particular memorable performances, this one in Shole and the Tiwar dialogue as well.
Iske alawa, A.K. Hangal ne Heer Ranjha, Namak Haram, Shaukeen, Shole, Aina Avatar, Arjun Andhi, Tapasya, Kora Kagaz aur Bawarchi jaise filmon mein ahem bhumika nibhai. Rashtrapati Abdul Kalam ne A.K. Hangal ko 2006 mein Padma Bhushan Award se sammanit kiya.
Well, yes, moving on now, let's talk about a musician. Well, I am talking about Chris Curtis. Best known for being with the 1960s beat band, The Searchers, I have selected the song from his particular band. This is Needles and also The Searchers Think.
I saw her today. I saw her face. It was a face I loved.
आज पुण्यतिथि है अतुल प्रसाद सेन की। अतुल प्रसाद सेन को बचपन से ही संगीत और साहित्य में गहरी रुचि थी। पढ़ाई में होशियार और सोच में बेहद संवेदनशील, उन्होंने आगे चलकर कानून की पढ़ाई की और एक जाने माने वकील भी बने। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक वकील तक सीमित नहीं रही, वे लखनऊ विश्वविद्यालय के सह स्थापकों में भी शामिल हुए। अतुल प्रसाद सेन बांग्ला भाषा के एक प्रख्यात गीतकार और कवि थे। उनके गीतों में समाज की पीड़ा, इंसानियत और भविष्य की उम्मीद झलकती है।
मुरली खांदे राधे राधे बोले, मुरली खांदे राधे राधे बोले, श्याम सुंदर।
Listeners, today we are also remembering Albert Bruce Sabin. Today it's his birth anniversary. Well, the medical researcher, we best know him for developing the oral polio vaccine, which has played a key role in nearly eradicating the disease. Well, Dr. Albert Sabin, inventor of the oral polio vaccine, this played a significant role in eliminating the estimated 350,000 annual deaths from polio that occurred as recently as 1988.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।